हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अगली सुबह होते ही मानस और अक्षय फिर से अस्पताल के लिए निकल गए। उन्हें पता था कि घर में रहकर उन्हें अंबिका की कोई खबर नहीं मिलेगी और दोनों को अपनी बहन की चिंता हो रही थी। उन्होंने देविका को अभी तक इस बारे में नहीं बताया था। घर से निकलते वक्त देविका ने सवाल किया, भैया कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? कल भी कितनी देर के लिए चले गए थे और मानस वापस आया तो एकदम चुपचाप था। क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है? मुझे भी बताइए। देविका के इतने सारे सवाल सुनकर अक्षय ने मानस की तरफ देखा और फिर देविका को जवाब दिया, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बस काम से जा रहे हैं। हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई है ना, वो लोग अंबिका दीदी को ढूंढ रहे हैं और उसी में पूछताछ के लिए हमें जाना पड़ता है, क्योंकि हम घर पर नहीं बुला सकते ना इंस्पेक्टर को। अक्षय ने जैसे तैसे ये बहाना बनाया, क्योंकि वो देविका को सच नहीं बता सकता था। उसे पता था कि फिर वो भी वहाँ जाने की जिद करेगी और अक्षय फिलहाल उसे वहाँ नहीं ले जा सकता था। उसे पता था कि इसमें बहुत खतरा हो सकता है। अपनी एक बहन से वो पहले ही दूर हो गया था, इसलिए दूसरी बहन को वो इन सब मुसीबतों से दूर और बचाकर रखना चाहता था। देविका ने इस बात पर फिर कोई सवाल नहीं किया। उसे पता था कि पापा की वजह से इंस्पेक्टर को वो घर नहीं बुला सकते, भले ही सार्थक उनके घर के पास ही रहता हो और वो पहले से ही उन्हें जानता हो। वो अंबिका से मिलने अक्सर उनके घर आता जाता रहता था। अंबिका और अक्षय एक ही उम्र के थे और उनका बहुत अच्छा दोस्त भी था, लेकिन अगर वो एक इंस्पेक्टर की तरह पूछताछ के लिए घर पर आता तो देविका के पापा भी इस बारे में सवाल करते। अंबिका के घर में न होने की वजह से वे भी बहुत परेशान थे, लेकिन अपने बच्चों को और ज्यादा परेशानी नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सवाल करना बंद कर दिया था। वे अंबिका से बात करने की जिद करते थे, लेकिन कभी कभी अक्षय और देविका ने उसे समझा दिया था कि अंबिका अपनी नई जॉब की वजह से काम में बिजी है, इसलिए वो अभी किसी से ज्यादा बात नहीं कर पाती, बाद में वो उन सबको फोन करेगी। किसी तरह देविका को समझाकर अक्षय और मानस दोनों वहाँ से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद देविका के पापा वहाँ आए और उन्होंने भी बाहर पार्क तक टहलने के लिए कहा। उनके जाने के बाद देविका ने दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने काम में लग गई। आजकल घर का ज्यादातर काम उसे ही करना पड़ता था। उसके भाई मदद तो करते थे, लेकिन उन्हें खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए देविका को ही बनाना पड़ता था उन सबका खाना, और वो उसी की तैयारी करने लगी। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में अंबिका को इमरजेंसी से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन ये इंस्पेक्टर आईपी रूम था जो काफी बड़ा और लग्जरी था। बाकी अस्पताल के रूम से काफी अलग और काफी ज्यादा स्पेस था वहाँ पर। उसे एक बड़े से स्पेशल कमरे में एकदम बीच में एक बड़ा सा व्हाइट कलर का अस्पताल का बेड पड़ा हुआ था और उस पर अंबिका अभी भी बेहोश थी। उसके हाथ में अभी भी आईवी ड्रिप लगी हुई थी, लेकिन चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क नहीं था। लगभग 40 घंटे बाद उसकी पलकें हिलीं और धीरे से उसने अपनी आंखें खोलीं। पहले उसे सब कुछ काफी धुंधला नजर आया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अस्पताल की वो सफ़ेद रंग से पेंट हुई छत एकदम साफ नजर आई। उसने नज़र एक तरफ घुमाई तो उसे समझ आ गया कि वो अस्पताल के रूम में थी। थोड़ा सा भी हिलने पर उसे अपने चेस्ट के पास काफी तेज दर्द महसूस हुआ। उसके बाईं तरफ के कंधे में भी बहुत तेज दर्द था, क्योंकि कंधे और चेस्ट के एकदम बीच में गोली लगी थी और घाव अभी ताज़ा था। अंबिका ने अपना दूसरा हाथ हिलाने की कोशिश की तो उसे किसी और का स्पर्श महसूस हुआ। उसने धीरे से नज़र दाहिनी तरफ घुमाई तो देखकर उसे हैरानी हुई। एक कुर्सी पर वेदांश बैठा हुआ था और उसने अंबिका का हाथ अपने हाथों में थामा हुआ था। वो इस वक्त सो रहा था, इसलिए उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी, लेकिन ऊपर नज़र उठाने पर अंबिका को उसका चेहरा एकदम साफ नज़र आया। वेदांश को अपने इतने नज़दीक हाथ पकड़े हुए बैठा देखने की उम्मीद अंबिका को नहीं थी, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। अंबिका ने अपने आप से बात करते हुए कहा, ये यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन क्यों? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन सपने में मैं इसे क्यों देखूंगी अपने पास? और ये इतना तेज दर्द, क्या सपने में भी दर्द होता है? अंबिका को यकीन नहीं हो रहा था वेदांश को ऐसे अपना हाथ पकड़े हुए अपने साइड में बैठा देखकर, इसलिए उसे लग रहा था कि वो सपना देख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था कि ये सपना नहीं हकीकत है। अंबिका ने अपना हाथ निकालने की कोशिश की, लेकिन सोते हुए भी वेदांश की पकड़ काफी मजबूत थी और उन दोनों की उंगलियां आपस में फंसी हुई थीं, तो अंबिका अपना हाथ नहीं छुड़ा पाई। फिर उसने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि ज्यादा हिलने डुलने पर उसे ज्यादा तेज दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन साइड में गर्दन घुमाकर वो वेदांश की तरफ ही देखने लगी। वेदांश बहुत ही असहज मुद्रा में बैठा हुआ सो रहा था, क्योंकि पिछली रात भी वो नहीं सोया था। अंबिका की वजह से बहुत टेंशन में था और कल रात जब उसने अंबिका को देख लिया था तभी उसे थोड़ी राहत महसूस हुई थी और अभी कुछ देर पहले ही उसे नींद आई थी। लेकिन अंबिका को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने वेदांश की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, ये ऐसे कैसे बैठे हुए सो गया इतनी असहज मुद्रा में? मुझे तो कभी भी नींद नहीं आती और मैं यहाँ पर कब से हूँ? और ये गोली, आह, पता नहीं क्यों मैं वहाँ पर गई थी। अंबिका के चेहरे पर बहुत दर्द साफ नजर आ रहा था जो इस वक्त उसे हो रहा था, लेकिन इसके अलावा भी उसके मन में कई सारे सवाल थे। फ्लैशबैक। वेदांश के कमरे से बाहर निकलकर जाने के बाद जब दरवाज़ा खुला हुआ था और अंबिका को बाहर से आवाज़ सुनाई दे रही थी, उसने अपने कपड़े एकदम ठीक किए और उठकर दरवाजे की तरफ ही आने लगी। अंबिका ने बाहर झांककर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नज़र नहीं आया और आवाज़ें अब उसे एकदम साफ सुनाई दे रही थीं। अंबिका ने कमरे से बाहर जाकर इधर उधर देखते हुए खुद से सवाल किया, क्या चल रहा है वहाँ पर और वेदांश अचानक से कहाँ चला गया? अब वो किससे बात कर रहा है? एक आवाज़ तो उसकी है, लेकिन दूसरी ये आवाज़ तो मैंने पहली बार ही सुनी है। इस वक्त कौन आ सकता है? वो काफ़ी देर बाद ही कमरे से निकली थी। वो सोच रही थी कि वो बाहर जाए या फिर नहीं, क्योंकि उसे पता था वेदांश को पसंद नहीं आता है कि वो कमरे से बाहर निकल जाए। लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद वो खुद को नहीं रोक पाई और वहाँ आ गई। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आने लगी, उसने देखा कि वेदांश और उसके सामने एक और कोई आदमी था। वो दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा और छीना झपटी कर रहे थे, शायद किसी चीज के लिए। अंबिका को कुछ नजर नहीं आया तो वो जिज्ञासा में कुछ और सीढ़ियां नीचे उतर आई। अंबिका कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही एकदम अचानक से गोली उसकी चेस्ट के पास आकर लगी और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी बॉडी को एकदम सुन कर दिया हो। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसके पैर एकदम कमजोर पड़ने लगे और कुछ देर बाद वो एकदम से जमीन पर गिर गई। वेदांश का चेहरा उसे आंखों के सामने नजर आया और फिर सब कुछ धुंधला होते हुए एकदम ही काला हो गया। फ्लैशबैक खत्म। अंबिका वो सब कुछ याद करते हुए खुद को ही कोस रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसे जो भी गोली लगी वो गलती से थी। किसी की भी नीयत नहीं थी उसे गोली मारने की, और अगर वो कमरे में रहती और सिर्फ ये जानने के लिए कि वहाँ पर क्या चल रहा है वहाँ तक ना जाती, तो शायद आज उसे इतना दर्द ना बर्दाश्त करना पड़ता। और इस बात के लिए वो वेदांश को भी दोष नहीं दे पा रही थी। लेकिन उसकी नज़रें बार बार वेदांश के चेहरे पर ही ठहर रही थीं। माथे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। अंबिका कुछ पलों तक एक टक उसकी तरफ ही देखती रही। उसे खुद भी नहीं पता था क्यों, क्या चल रहा है अंबिका के मन में, और वेदांश नींद से कब जागेगा? क्या अंबिका उसे नींद से जगाएगी? और अंबिका को होश में आया देखकर क्या वेदांश खुश होगा या फिर से पहले की तरह बर्ताव करेगा? और अंबिका के भाई फिर से अस्पताल आ रहे हैं, क्या वेदांश उन्हें होश में आने के बाद अंबिका से मिलने देगा? ये सब कुछ पता चलेगा अगले एपिसोड में। लेकिन पहले ये बताइए, कैसा लगा आज का एपिसोड? अगर आप लोग स्टोरी से रिलेटेड कोई भी बात करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @simranas22। यहाँ पर प्रोफाइल से भी आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है तो भी आप इंस्टा पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको लिंक भेज देंगे।